أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة نساء آیت نمبر 81. سورہ نساء کے درمیانے چیپٹرز میں ہم لوگوں نے پچھلی دفعہ جو سبق پڑھا تھا وہ قتال کے بارے میں تھا، یعنی کہ فزیکل جہاد، اللہ کی راہ میں اللہ اور رسول کے دشمنوں سے لڑنے کا سبجیکٹ ڈسکس ہو رہا تھا. وہ سبجیکٹ تقریباً کل اس بات پہ ختم ہوا ہے پچھلے سبق میں کہ جو پھر جائے، جو اللہ کے حکم سے پھر جائے، تو ہم نے پیغام پہنچانے والے کو اس پر کوئی نگہبان یا چوکیدار بنا کے نہیں بھیجا. یہ دین کے ٹھیکیدار نہ بنے. کسی کے دل میں ایمان داخل کرنا جو ہے یہ اللہ کا کام ہے، کیونکہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو منہ پر تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے بات مانی ہے اور بعد میں وہ دین کے سب سے بڑے دشمن ثابت ہوتے ہیں. تو اس لیے جماعت سازی میں بہت ضروری ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے جو لیڈر ہیں اور جو جماعت کے ممبران ہیں وہ لوگ ہوشیار ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، طاعتن، ہم نے اطاعت کی، ہم نے حکم مانا. فَإِذَا بَرَزُوا، پس جب وہ باہر جاتے ہیں، مِنْ عِنْدِكَ، آپ کے پاس سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس سے، اے قرآن کو کی جماعت سازی کرنے والوں، جب آپ کے پاس سے یہ لوگ باہر جاتے ہیں، بَيَّتَ، یہ رات کو مشورے کرتے ہیں، طائفتم منہم، ایک گروہ ان میں سے، یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں باقاعدہ ایک گروہ کی شکل میں جو آتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں اور منہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے بات مانی، لیکن جب یہ آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو یہ رات کو مشورے کرتے ہیں، غیر الذی تقولو، اس کے خلاف جو آپ کہتے ہیں، غیر الذی تقولو، اس کے خلاف جو وہ کہہ چکے ہیں، یعنی وہ اللہ پر ایمان آپ کے سامنے لا چکے ہیں، لیکن پھر یہ رات کو اکیلے میں جب آپس میں ہوتے ہیں، بالکل جیسے سورہ البقرہ میں بتایا گیا ہے، وَإِذَا خَلَا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو پھر یہ ان کی طرح کی باتیں کرتے ہیں، وَاللَّهُ يَكْتُبُ، اور اللہ لکھ لیتا ہے، ما یبیتون، جو یہ رات کو مشورے کرتے ہیں، یعنی اللہ سے کوئی بات نہیں چھپی ہوئی، فعارض عنہم، تو آپ منہ پھیر لیں ان سے، وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ رکھیں اللہ پر. مومن کی شان یہ ہے کہ اس کا طرز عمل، اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، وہ سب کے ساتھ ایک جیسا ہوتا ہے، وہ سب کو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے. جس کے دل میں کیڑا ہے، جس کے دل میں اندھیرا ہے، جس کے دل میں بیماری ہے، اور وہ منہ پر بات ماننے کے باوجود دین کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے ہم ان کی ہر بات لکھ لیتے ہیں. اور مومنوں کو حکم ہے، اور جو مومن جماعت سازی میں مصروف ہیں، کہ ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ پر توکل کریں. توکل کا کیا مطلب ہے؟ کہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنا. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، پس کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر یہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا، اللہ کے سوا کسی کے پاس سے آیا ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ، البتہ ضرور پاتے وہ اس میں، اختلافاً کثیراً، بہت سارا اختلاف. اس میں ایسی باتیں ہوتی جو آپس میں متصادم ہوتی، آپس میں مختلف ہوتی. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ، اور جب ان کے پاس آتی ہے کوئی خبر، مِنَ الْأَمْنِ، امن کی، او الخوف، یا خوف کی، اذاعوا بہ، وہ اسے مشہور کر دیتے ہیں. ایک اور بڑی خطرناک نشانی جو ہم سب کو بہت زیادہ کان کھول کے سننے کی ضرورت ہے، منافق کی نشانی بتائی جا رہی ہے، کہ جب ان کے پاس کوئی امن کی یا خوف کی خبر آتی ہے تو وہ اسے فوراً مشہور کر دیتے ہیں. اب قرآن جو میں نے ایک سال پہلے پڑھایا ہے، اور جو پانچ سال پہلے پڑھایا ہے، اور جو میں نے خود پڑھا ہے، اس وقت شاید اس قدر افواہوں کا طوفان نہیں تھا جتنا آج کے زمانے میں ہے، اور یہ بڑھنے والا ہے. میڈیا کا ایک اپنا سرکس ہے، فیس بک کا ایک اپنا طریقہ ہے، واٹس ایپ پہ لوگوں کو لمحے کی خبریں، واٹس ایپ پہ ایک بٹن دبانے سے کم از کم آپ 100, 50 بلکہ 1000 تک لوگوں کو ایک خبر پہنچا سکتے ہیں. तो ये मुनाफिक की निशानी है कि जब इनके पास कोई अमन की या खौफ की खबर आती है, अजाऊ भी, अजाऊ का मतलब ये है कि उसे मशहूर कर देते हैं, उसे आम कर देते हैं, फैला देते हैं उसको, वलौ रद्दूहू, और अगर वो उसे पहुंचाते इला रसूले, रसूल की तरफ, अपने सरदार की तरफ, व इला उलिल अम्रे, या हाकिमों की तरफ, मिनहुम अपने में से, लअलिमहुल्लज़ीना, अलबत्ता जान लेते उसको वो लोग, यस्तंबितूनहु मिनहुम, इस्तिनबात करना, ये लफ्ज़ जो है यस्तंबितूना, ये बतन से निकला है, बा त्वा नून, जिसका मतलब है पेट या अंदर की चीज़। यस्तंबितून यानी इस्तिनबात करने का मतलब ये है गहराई में जाके तहकीक करना। तो मोमिन की निशानी क्या है, जब उसे कोई अच्छी या बुरी खबर मिलती है तो वो रद्दूहु इला रसूल, वो रसूल की तरफ भेजता है, या अपना जो बड़ा लीडर है, जो भी उसका उस वक्त लीडर है, या उलुल अम्र जो हाकिम है, और वो उसको जान लेते हैं। जो लोग इसमें तहकीक करते हैं यानी वो उसकी गहराई में जाके उसे सोचते हैं, उसको उनको खबर की हकीकत मालूम हो जाती है, वो उन बातों को मशहूर नहीं करते। वलौला फजलुल्लाहि अलैकुम, और अगर अल्लाह का फजल तुम पर ना होता, व रहमतुहु और उसकी रहमत, लत्तबअतुम शैतवाना, अलबत्ता तुम शैतान के पीछे लग जाते, इल्ला कलीला सिवाय चंद एक के। यानी अल्लाह की बहुत बड़ी एक फजीलत जो मोमिनों को हासिल है वो ये है कि वो हर अफवाह और हर खबर फौरन नहीं मशहूर करते, और उनके इस कैरेक्टर की वजह से वो शैतान के पीछे नहीं लगते, क्योंकि आम और मशहूर बातें तो वो हैं जो लोगों के नफ्स को सेटिस्फाई करती हैं, जो लोगों की शहवात को अपील करती हैं, और ये बातें जो हैं ये अल्लाह को, अल्लाह से दूर करने वाली बातें हैं। तो ये मोमिन की फजीलत है और मोमिन पे अल्लाह की रहमत है कि वो शैतान का इत्तबा नहीं करता। आज के बाद जब कोई बात आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें और अपनी वॉल पे लिखें और अपनी व्हाट्सएप में लोगों को भेजें, तो 100 दफ़ा इससे पहले सोचें कि क्या आपने तहकीक कर ली है कि वो बात बिल्कुल ठीक है। फ़कातिल फ़ी सबीलिल्लाह, तो अल्लाह की राह में लड़ें। ला तुकल्लिफ़ो, कोई मुकल्लिफ़ नहीं है, किसी पर बोझ नहीं है, आप पर कोई तकलीफ़ नहीं है, इल्ला नफ्सा का, मगर अपनी ज़ात। वहर्रिदिल मोमिनीन, और आमादा करें, एक रग़बत दिलाएं मोमिनों को। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ए हक़ बयान करने वाले, आपसे आपकी अपनी पूछ होगी। हाँ, आपने उभारना है और आमादा करना है मोमिनों को अल्लाह की राह में लड़ने के लिए। असल्लाहु, करीब है कि अल्लाह, अय यकुफ़ा, ये कि रोक दे, बअसल्लज़ीना कफ़रू, ज़ोर और जंग उन लोगों की जो इनकारी हैं, जो काफिर हैं। वल्लाहु अशद्दु बअसा, और अल्लाह की जंग सख्त तरीन है, वह अशद्दु तनकीला, और वो सबसे सख्त सज़ा देता है। तो अगर अल्लाह की राह में कोई तकलीफ़ या कोई सख्ती दरपेश भी आ जाए, उसको हंसी खुशी और खंदा पेशानी से और उम्मीद के साथ और तवक्कुल के साथ बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जो है वो सख्त तरीन जंग खुद करने वाला है और बड़ी सख्त सज़ा देने वाला है। और अल्लाह से हमें पूरी उम्मीद है कि इस्लाम के दुश्मनों को और ईमान के और मोमिनों के दुश्मनों को वो सख्त तरीन सज़ा देगा। मैं यशफ़ा शफ़ातन, जो कोई सिफारिश करता है हसना, एक अच्छी, एक नेक सिफारिश करता है, यकुल लहू, होगा उसके लिए, नसीबुम मिनहा, एक हिस्सा उसमें से। तो सिफारिश, लोग कहते हैं ना सिफारिश की इजाज़त तो कुरान में दी गई है, तो ये ज़रा कान खोल के सुन लें कि कौन सी सिफारिश की इजाज़त दी गई है। जिसने अच्छी सिफारिश की उसके लिए उसमें हिस्सा होगा। व मै यशफा शफ़ातन, और जिसने सिफारिश की एक सिफारिश, सैयअ, बुरी, सैयअतैन यकुल लहू, होगा उसके लिए, किफ़्लुम मिनहा, एक बोझ उसमें से। पहली अच्छी सिफारिश में देखें, नसीब मिनहा, उसको एक हिस्सा मिलेगा उसमें से, और जिसने बुरी सिफारिश की तो उसके ऊपर बोझ होगा, उसका उसको उसका बोझ ढोना होगा। वकान अल्लाह हो, और है अल्लाह, अला कुल्ली शैइन मुकीता, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला। बुरी सिफारिश की मिसाल कहाँ से दूँ मैं आपको, कहाँ से शुरू करूँ, आपके अपने जहन में कितनी मिसालें होंगी। मिसाल के तौर पे एक सच्चा वाक्या मैं आपको सुनाती हूँ कि हमारे मुल्क के एक हस्पताल में एक जगह बनाई गई आज से तकरीबन 20 साल पहले, जहाँ पे नौमौलूद बच्चों की निगहदाश्त होती थी और नौमौलूद बच्चे वहाँ लाए जाते थे जो बीमार होते थे। उस ज़माने में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जो नौमौलूद बच्चों की स्पेशलाइजेशन या डिग्री रखता हो। और उस अस्पताल में वो जो यूनिट था उसका बड़ा एक ऐसे डॉक्टर को लगाया गया जिसको नौमौलूद बच्चों के बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं थी। आज भी वो यूनिट वहाँ मौजूद है। आज भी वहाँ पे नौमौलूद बच्चे ऐसी बीमारियों से मरते हैं जिनसे उनको बचाया जा सकता है। मरते अल्लाह के हुक्म से हैं, लेकिन उनका वहाँ पे गलत इलाज होता है, उनको वहाँ पे ख़तरनाक दवाइयाँ दी जाती हैं और वहाँ से जो लेकिन एक तो बच्चे वहाँ मर रहे हैं, माँ बाप रो रहे हैं, ख़ानदान रो रहे हैं, ऐसे बच्चे मर रहे हैं जो बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं, बड़े कीमती बच्चे होते हैं, शादी के 10-10 साल बाद पैदा हुए होते हैं। लेकिन चूंकि उस यूनिट में कभी कोई ऐसा डॉक्टर नहीं रहा जिसके पास ये स्पेशलाइजेशन थी, वहाँ आज आज दुनिया में नौमौलूद बच्चों की शरह अमवात जो है वो 1% से कम है, जबकि हमारे मुल्क में, हमारे प्यारे पाकिस्तान में 12% बच्चे, और ये तो हम अपने मुंह से कहते हैं, हकीकत ये है कि कम से कम 20% बच्चे अपनी ज़िंदगी के पहले साल में मर जाते हैं। तो ये एक सिफारिश जो की गई और एक नाअहल को वहाँ पे नौकरी दी गई और उसके बाद मुसलसल नाअहल लोग ही वहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि वो नाअहल लोग आने वाली नस्लों के डॉक्टरों को भी पढ़ा रहे हैं, क्या ये अजाब दर अजाब नहीं है? क्या आपने सोचा है कि वो पहली सिफारिश जिसने मानी थी और वहाँ पे एक नाअहल को नौकरी दी थी, वो कितना बड़ा बोझ उठा रहा है? वो उन माँ बाप के आंसुओं का, उनके गम का, उनके दुख का बोझ उठाने के साथ साथ आने वाले नस्लों के माँ बाप का, जिनके बच्चे उस यूनिट में ज़ाया होंगे, उन सब की बददुआओं का निशाना क्या वो नहीं बन रहा है? ये तो एक सच्ची मिसाल मैंने आपको दी है ताकि आपको समझ आ जाए कि नाजायज सिफारिश करने का बोझ क्या होता है। और अल्लाह फरमाता है, वकान अल्लाह हो और है अल्लाह अला कुल्ल शय मुकीता, हर चीज़ का हिसाब रखने वाला, उस पर कुदरत रखने वाला, उसे उसके ऊपर कुव्वत रखने वाला है अल्लाह। व इज़ा हुई तुम, और जब तुम्हें कोई दुआ दे, बितहियतिन एक दुआ के साथ, सलाम के साथ, फहयू बे अहसना तो तुम दुआ दो उससे बेहतर, मिनहा उससे, और रुद्दूहा या वैसा ही लौटा दो। शरा में यह है जब कोई अस्सलाम वालेकुम कहता है तो उसका जवाब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कहना या वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह ही व बरकातुहू कहना एहसन है, बेहतर है। अगर कोई गैर मुस्लिम सलाम करे तो उसको वालेकुम कहना बेहतर है, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं है कि वो एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं। जो मदीना के मुनाफिक थे वो अस्सलाम अलैकुम कहते थे, जिसका मतलब है कि तुम पर मौत हो या तुम पर कोई बीमारी हो, कोई बुरा लफ्ज़ है ये। तो इस वजह से ये कहा गया कि इनको जब तुम सलाम लौटाओ तो वालेकुम कह दो और यही काफ़ी है। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, अला कुल्ल शय इन हसीबा, हर चीज़ का हिसाब रखने वाला है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है। लयजमअन्नकुम, अलबत्ता वो ज़रूर तुम्हें जमा करेगा, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन, ला रैब फ़ीह, उसमें कोई शक नहीं है। वमन अस्दक़ु, और कौन ज़्यादा सच्चा है, मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से बात करने में। फ़मा लकुम, बस तुम्हें क्या हुआ है, फ़िल मुनाफ़िक़ीना, मुनाफ़िकों के बारे में, फ़िअतैन, तुम दो ग्रोह बन गए हो, वल्लाहु, और अल्लाह, अरकसहुम, अल्लाह ने उन्हें औंधा किया है, बिमा कसबू, बसबब उनके आमाल के, बसबब उसके जो उन्होंने कमाया है। ये दो ग्रोह जो हैं मुनाफ़िकों के बारे में, ये पहले तो जो है जंगे खंदक में भी ये दरपेश आ चुका है। यहाँ पे मसला क्या हुआ था कि जो किस्सा मैंने आपको सुनाया था कि एक मुसलमान और यहूदी का मामला था, और मुसलमान, चूंकि मुसलमान मुनाफिक था, वो चाहता था कि यहूदी सरदार से उसका फ़ैसला कराए, और यहूदी जो था वो हक़ पर था और उसको पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो सादिक और अमीन हैं, वो उनसे फ़ैसला कराना चाहता था। खैर, ये दोनों पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़ैसला कराने गए और फ़ैसला जो है वो यहूदी के हक़ में हुआ, क्योंकि वो ठीक बात कर रहा था। अब जब ये वहाँ से निकले हैं तो मुसलमान ने इस यहूदी को बहकाया है, उसको भड़काया और उसको कहा कि इन इनकी बात तुम क्यों मान रहे हो, आओ तुम्हारे फ़लां सरदार से पूछते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है और वो ज़्यादा बेहतर फ़ैसला देगा। और इन्होंने जाके फिर उनसे फ़ैसला मांगा है। वहाँ पे जो भी वारदात हुई, जब ये बात खुली और जब इस बात का पता चला और इस बात का एतराफ़ भी उस बदबख्त ने अपने मुंह से किया हज़रत उमर के सामने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फ़ैसला किया था और हमने वहाँ से फ़ैसला कराया, बल्कि रिवायात में यह है कि उसने जाके हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फ़ैसला किया है, आप क्या फ़ैसला करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका सर उड़ा दिया और उसे वहाँ पर कत्ल कर दिया, क्योंकि अल्लाह के रसूल के ऊपर फ़ैसला मांगना जो है ये दीन के मुनाफी है। उस इस बात पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हद जारी करने का हुक्म हुआ था कि इसने मुसलमान को कत्ल किया है। अब ये बात जो है इसमें कि तुम मुनाफिकों के बारे में दो फरीक बन गए हो, जबकि अल्लाह ने उन्हें औंधा किया था, अल्लाह ने उनको ऐसी ये सज़ा पहुँची है। अतुरीदूना, क्या तुम चाहते हो, अन तहदू, कि तुम राह पर ले आओ, मन अधल अल्लाह, जिसको अल्लाह ने गुमराह किया है। यानी मुनाफिक को सीधी राह पर लाना सिर्फ अल्लाह का काम है, उसको सिर्फ नसीहत की जा सकती है। वमन युद्लिल्लाहु, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, फलन तजिद लहू, बस हरगिज़ नहीं पाओगे तुम लहू सबीला, उसके लिए कोई भी रास्ता। वद्दू, वो चाहते हैं, लव तकफुरूना, काश तुम भी काफिर हो जाओ, कमा कफरू, जैसे वो काफिर हैं, फतकूनूना, पस तुम हो जाओगे सवाअन, बराबर, फला तत्तखिज़ु, पस ना बनाओ, मिनहुम, इन में से, औलिया, दोस्त। वही हुक्म जो सूरह आले इमरान में गुजर चुका है और सूरह अल बकरा में भी, कि ला तत्तखिज़ु बितानतुन, इनसे अंदर के राजदार दोस्त ना बनाओ, अहले किताब में से या कुफार में से। हत्ता युहाजिरु, यहाँ तक कि वो हिजरत कर जाएं, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। तो अल्लाह की हिजरत जो है, यहाँ पे हिजरत के तीन दर्जे आप समझ लें। ये हिजरत तो वो हिजरत है जो मक्का और मदीना के बीच में हुई है, लेकिन कुरान की तफसीर चूंकि हम पढ़ रहे हैं, हिजरत हा जा रा हे जीम रे, इसका मतलब है अकेला छोड़ देना, एक चीज़ को छोड़ देना। हिजरत जिसकी कुरान में जिस हिजरत का जिक्र है वो है अल्लाह की रजा के लिए एक अमर को छोड़ देना। गोया रोज़ा है, ये भी हमारी हिजरत है, हम हलाल चीज़ों को अल्लाह की मर्जी के लिए, अल्लाह की रजा के लिए छोड़ते हैं। हिजरत का पहला दर्जा है अपने नफ्स की ख्वाहिश से हिजरत करना। अगर मेरा नफ्स मुझे एक गलत बात कह रहा है तो मैं अल्लाह की रजा के लिए उस बात को नहीं करता और उस पर सब्र करता हूँ, और गोया मैंने अपने नफ्स से हिजरत इख्तियार की है। इसी हिजरत में ये भी है कि अपने नफ्स को अल्लाह की अतात पर आमादा करना, तो अल्लाह की नाफरमानी से रोकना और अल्लाह की अतात पर आमादा करना अपने नफ्स को, ये हिजरत का पहला दर्जा है जिसमें एक मोमिन अपने नफ्स से हिजरत कर जाता है। हिजरत का दूसरा दर्जा है कि अल्लाह की रज़ा की खातिर और अल्लाह की खुशी की खातिर हलाल चीज़ों से हिजरत कर जाना, जो मैंने अभी आपको रोज़ा बताया है, खाने पीने से रुक जाना, मियाँ बीबी के ताल्लुक़ से रुक जाना, गलत बात कहने से रुक जाना, गाली गलौज से, ऊंची आवाज़ से रुक जाना, ये हिजरत का दूसरा दर्जा है। और तीसरा दर्जा ये है कि जहाँ पर ये दोनों हिजरतें पूरी हो जाएँ, इंसान अपने नफ्स को भी कंट्रोल कर ले और इंसान हलाल चीज़ों के लिए भी अल्लाह के हुक्म से रुक सकता हो, लेकिन वहाँ पे उसको अपना दीन सही तरह अपने दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाए, तो फिर फिज़िकली वहाँ से हिजरत कर जाना और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना, ताकि अल्लाह के दीन पर सही अमल हो सके और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए मेहनत हो सके। तो ये तीन हिजरत के दर्जे हैं जो यहाँ आपने समझ लिए हैं, और ये जमात साजी का बहुत अहम हिस्सा है जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है कि मुसलमान मुआशरा आखिर बनाना कैसे है। तो तुमने कुफार में और अहले किताब में दोस्त नहीं बनाने, हत्ता युहाजिरु, यहाँ तक कि वो हिजरत कर जाएं, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, फ़इन तवल्लौ, पस अगर वो तुमसे मुंह फेर लें, फ़खुज़ूहुम, हाँ जब हिजरत हो चुकी हो और एक मुआशरा कायम हो चुका हो तो फिर अगर वो मुंह फेरें, फ़खुज़ूहुम, तो उन्हें पकड़ो, वक्तुलूहुम, और उनसे लड़ो, हैसा वजद तुमोहम, जहाँ कहीं तुम उन्हें पाओ, वला तत्तखिज़ू, और ना बनाओ, मिनहुम, उनमें, वलियन, कोई दोस्त, वला नसीरा, और ना ही मददगार। मुस्लिम उम्मत की, मुसलमान मोमिन उम्मत की शान ये है कि उनके दोस्त और मददगार मोमिन होते हैं और अल्लाह होता है। और कोई नहीं होता। इल्लज़ीना, सिवाय उन लोगों के। हाँ, हुक्म तो आ गया है कि उनसे लड़ना है, उन्हें कत्ल करना है, तो फिर एक्सेप्शन बताई जा रही है। इल्लज़ीना, सिवाय उन लोगों के, यसिलूना, जो मिल गए हैं, एक ताल्लुक रखते हैं, इला कौमिन, एक कौम की तरफ से, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, व बैनहुम, और उनके दरमियान, मीसाकुन, एक वादा है, औ जाऊकुम, या तुम्हारे पास आए, हसरत, तंग होकर, सुदूरहुम, उनके सीने, अय युकातिलूकुम, के वो तुमसे लड़ें, औ युकातिलू कौमहुम, या वो लड़ें अपनी कौम से। अब एक्सेप्शंस किसकी हैं कि देखो, एक दफ़ा जब अल्लाह की उम्मत, अल्लाह के रसूल की उम्मत कायम हो जाए, मुआशरा बन जाए और एक जमात साजी हो जाए, तो फिर जो काफिर हैं उन्हें पकड़ना है और उन्हें कत्ल करना है जहाँ कहीं तुम उन्हें पाओ, और उनमें दोस्त और मददगार नहीं बनाने। हाँ, अगर ऐसे लोग हैं जिनका तुम्हारे साथ कोई एग्रीमेंट है, पीस एग्रीमेंट है, जैसे आजकल के ज़माने में पीस एग्रीमेंट होते हैं, पहले वक्त में जैसे हमें पता है सुलह हुदैबिया हुई है, अगर वो तुमसे मिल जाए और तुम्हारा और उनकी कौम के दरमियान एक वादा है, एक मुआहिदा है, तो फिर उन्हें नहीं कत्ल करना। या अपने, तुम्हारे एक कौम के साथ लड़ाई है लेकिन उस कौम से भाग के वो तुम्हारे पास आ जाएं और उनके सीने तंग हों लड़ाई के लिए, यानी ना वो तुमसे लड़ना चाहते हैं और ना ही अपनी कौम से लड़ना चाहते हैं, वो अमन में रहना चाहते हैं, तो फिर उनको नहीं कत्ल करना, उनसे नहीं लड़ना। वलौ शाह अल्लाह हो, और अगर अल्लाह चाहता, लसल्लतहुम अलैकुम, तो उन्हें मुसल्लत कर देता तुम पर, फलकातलूकुम, तो वो ज़रूर तुमसे लड़ते। ऐसे लोग हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो वो तुम पे मुसल्लत होकर तुमसे लड़ते। फने तजलूकुम, पस अगर वो तुमसे किनारा कश हो जाए, ये लड़ने वाली कौम अगर किनारा कश हो जाए, फलम युकातिलूकुम, फिर वो तुमसे ना लड़े, वह अलकाउ इलैकुमुस्सलमा, और वो तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम डालें। तो तीन किस्म की कौमें बताई, तीन किस्म के लोग बताए गए हैं गैर मुस्लिम। एक तो वो हैं कि उनके और आपकी कौम के दरमियान अमन का मुआहिदा है, वो गैर मुस्लिम हैं लेकिन वो आपके साथ, आपके दोस्त हैं और आपके साथ लड़ना नहीं चाहते, उनके बाशिंदों को नहीं कत्ल करना। दूसरी वो कौमें हैं जो आपसे लड़ रही हैं लेकिन उनमें भी ऐसे लोग हैं जो खुद नहीं लड़ना चाहते, बल्कि वो आपसे पनाह मांगते हैं और आपको कहते हैं कि हम अपनी कौम से भी नहीं लड़ते और आपसे भी नहीं लड़ते, उनको भी छोड़ दें। फिर हाँ, ऐसी कौमें हैं जो लड़ रही हैं आपसे लेकिन लड़ाई में वो मुसल्लत नहीं होती हैं, आपसे लड़ती हैं और फिर आपसे किनारा कश होती हैं और फिर दोबारा आपसे कहती हैं कि हम नहीं लड़ते आपसे, हम आपके साथ अमन में रहना चाहते हैं, हम आपसे सुलह करना चाहते हैं। फमा जअलल्लाहु लकुम, तो फिर नहीं दिया है अल्लाह ने तुम्हें, अलैहिम सबीला, उन पर कोई भी राह। एक मुकम्मल जमात साजी अल्लाह ने कर दी है। जब मुस्लिम मोमिन जमात बन जाती है तो फिर उसका अदब क्या है, उसके एम्बेसडर्स क्या करते हैं, उसकी फौजें क्या करती हैं। ये जो दुनिया में आजकल एक लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लोगों ने जहाद और किताल को बदनाम करने के लिए जो ओछे हथकंडे लोगों ने इस्तेमाल किए हैं, अगर आपको इन आयात की समझ आ गई है तो आपको उनके सारे हथकंडे समझ आ जाएंगे। सतजिदूना, अनकरीब तुम पाओगे, आखरीना, ऐसे लोग भी, एक और किस्म के लोग, युरीदूना, वो चाहते हैं, अय या अमनूकुम, कि वो तुमसे अमन में रहें, व या अमनू कौमहुम, और अपनी कौम से भी वो अमन में रहें। कुल्लमा रुद्दू, जब कभी वो बुलाए जाते हैं, इलल फितनते, एक फितने की तरफ, उर्की सूफीहा, तो वो लौट जाते हैं उसमें। अब ये वो लोग हैं जो बड़े अनस्टेबल हैं, जो बॉर्डर पे रहते हैं, और वो उनको जब किसी शरारत की तरफ बुलाया जाता है, फितना तो फसाद है ना, कि जब बॉर्डर पे कोई फितना फसाद होता है तो वो फिर दुश्मन का साथ देते हैं। फ़इल्लम यातज़िलूकुम, बस अगर वो तुमसे किनारा कशी ना करें, वयुल्कू, और वो ना डालें यानि ना दें, इलैकुमुस्सलमा सलमा, तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम, वयुकुफ्फू, और ना रोकें अपने हाथ, अईदियहुम, तुमसे यानि अपने हाथ तुमसे ना रोकें। ये फ़इल्लम जो है ना, ये तीनों के लिए आया है। फ़इल्लम, बस अगर नहीं, यातज़िलूकुम, वो तुमसे किनारा इख्तियार करें, वयुल्कू इलैकुमुस्सलमा, और ना ही वो तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम डालें, व यकुफ़ू अय दियाहुम, और ना ही वो अपने हाथ रोकें। ये वो लोग हैं फ़खुज़ूहुम, तो फिर इन्हें पकड़ो, वक्तुलूहुम, और इन्हें कत्ल करो, हैसु सकिफ़्तुमूहुम, जहाँ कहीं तुम इन्हें पाओ, वउलाइकुम, और यही वो लोग हैं, जअलना लकुम, हमने दिया है तुम्हें, अलैहिम, इन पर सुल्तानम मुबीना, एक खुली सनद दी है हमने तुम्हें, खुली हुज्जत दी है इनके ऊपर, तुम इन्हें कत्ल करो, ये फसादी हैं। वमा कान अल मोमिन, और नहीं है एक मोमिन के लिए, अन यक्तुल मोमिनन, ये कि वो कत्ल करे एक मोमिन को, इल्ला खतान, खतान, मगर गलती से। अब एक मुसलमान के हाथों, एक मोमिन के हाथों दूसरे मोमिन का कत्ल, उसके कवानीन बताए जा रहे हैं। इजाज़त नहीं है कि वो एक मोमिन दूसरे को कत्ल करे, हाँ गलती से, जैसे एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी से लग गया, गलती से हथियार चल गया, गलती से गोली चल गई। वमन कत्ल मोमिनन, और जिसने कत्ल किया एक मुसलमान को, खतान, गलती से, फतहरीर, पस वो आज़ाद करे, रकबतिन, एक गुलाम को, मोमिनतिन, जो मोमिन है, वदीयतुन, और ये दियत का कानून यहाँ है कि उसने, दियत क्या चीज़ है, खून बहा, खून बहा की का माल उसने देना है, मुसल्लमतुन, हवाला करना है अमन के साथ, इला अहली ही, उसके वारिसों को, इल्ला सिवाय, यसद्दकु, कि वो माफ़ कर दें। दियत का कानून पढ़ लें, एक आयत में है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसने मोमिन को गलती से कत्ल किया, तो फिर उसने एक गुलाम को आज़ाद करना है और खून बहा देना है। गुलाम को आज़ाद करना तो आजकल नहीं है, उसकी कीमत भी शरा में लगाई गई है कि गुलाम की कीमत आज के ज़माने में इतनी होगी, और फिर दियत भी उसने देनी है उसकी वारिसों को, सिवाय इसके कि वो वारिस माफ़ कर दें, या दियत का कोई हिस्सा माफ़ कर दें, या दियत को ही माफ़ कर दें। फ़इनकाना मिन कौमिन, बस अगर वो हो उस कौम से, अदुविल्लकुम, जो तुम्हारी दुश्मन है, वह हुआ मोमिनुन, और वो फिर भी मुसलमान हो, खुद मुसलमान हो, फतहरीरो, बस आज़ाद करे, रकबतम मोमिना, एक गुलाम को जो मोमिन है, व इनकान अमिन कौमिन, और अगर वो ऐसी कौम से हो, बैनकुम व बैनहुम, उनके और तुम्हारे दरमियान अहद है, मीसाख हुआ हुआ है, मीसाखुन, फिदियतुम मुसल्लमतुन, तो खून बहा देना है, इला अहली ही, उसके वारिसों को, व तहरीर रकबतम मोमिना, और आज़ाद करना है एक गुलाम को। पूरी जमात के उसूल बताए गए हैं कि अगर एक मोमिन खता से कत्ल हो जाए तो क्या करना है। हाँ, मोमिन के जो उस मकतूल के जो फैमिली वाले हैं वो माफ़ भी कर सकते हैं, अगर वो किसी ऐसी कौम से है जो दुश्मन है, लेकिन खुद यानी एक मुसलमान के हाथों कत्ल हुआ है, लेकिन अभी कबीलों के दरमियान दुश्मनी है, हो सकता है वो एक नॉन मुस्लिम कबीला हो, तो फिर क्या करना है। तो फिर एक गुलाम को आज़ाद करना है, और अगर वो ऐसी कौम से है कि उनके और मोमिनों की कौम के दरमियान मुहायदा है, तो फिर खून बहा देना है। तो जो दुश्मन कौम है उससे खून बहा नहीं मांगा जा रहा, क्योंकि ये उस वक्त के कवानीन हैं जब ये दियत के कवानीन आ रहे थे और ये मदीना में प्रैक्टिस शुरू हो रही थी। फमल्लम यजिद, और जो ना पाए, जिसको ये ना मुयस्सर हो, फसियाम शहरैन मुतताबिआइन, तो वो 2 माह के मुसलसल रोज़े रखे, जिससे एक मोमिन का कत्ल हुआ, और वो भी सेल्फ डिफेंस में नहीं, और यानी कि उसने किसी इरादे से वो कत्ल नहीं किया, गलती से हुआ, तो उसका जो फिदिया है, एक तो वो रकम है और ग़ुलाम आज़ाद करना है, और जिसके पास रकम नहीं है तो वो 2 माह के मुसलसल रोज़े रखेगा। तौबतम मिन अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से तौबा है। वकान अल्लाह हो, और है अल्लाह, अलीमन हकीमा, हर चीज़ को जानने वाला और हिकमत वाला। वमन यक्तुल मोमिनन, और जिसने कत्ल किया मोमिन को, मुतअम्मिदन, अमद का मतलब है इरादा करना, अमदा, मुतअम्मिद, जानबूझ कर, इरादा करके, जिसने एक जिसको प्री मेडिटेटेड मर्डर कहते हैं, यानी मर्डर विद इंटेंट, सोच के, सोच समझ के और प्लान करके एक मोमिन की जान लेना। तो जिसने मोमिन को मुतअम्मिदन कत्ल किया दानिस्ता, फजज़ाउहू जहन्नम, तो उसकी सज़ा जहन्नम है। मोमिन यानी बेगुनाह मोमिन का कत्ल जो है, वो उसकी कोई माफ़ी नहीं है दुनिया में। आज अगर आपको इससे पहले नहीं पता था तो मैं आपको बता देती हूँ, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। फजज़ाउहू जहन्नम, तो उसकी सज़ा जहन्नम है, खालिदन फ़ीहा, हमेशा रहेगा उसमें। वग़ज़िबल्लाहु अलैहिम, اور اللہ کا غضب ہے اس پر، ولعنہ اور اس کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پر، وعد لہ اور اس کے لیے تیار کر رکھا ہے، عذاباً عظیما ایک بہت بڑا عذاب۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے عذاب سے اور اس طرح کی سزا سے تمام مومن مسلمانوں کو بچا کے رکھے۔ اس دنیا میں، آج کل ہماری دنیا میں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کون قتل ہو رہا ہے اور کیوں قتل ہو رہا ہے، اور جو مومن مسلمان قتل ہوئے ہیں بے گناہ، اللہ ان سب کی بخشش کرے، ان کے خاندانوں کو صبر دے، اللہ ہم سب کو قرآن پڑھ کے سمجھ کے آگے پہنچانے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔